ओम शांति। राजयोग शिविर के अंतर्गत आज तीसरे दिन पर राजयोग का आधार एवं विधि सीखने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। जब से आप आए हैं, योग शब्द कई बार सुना है और शायद यहां इसीलिए आने का एक आकर्षण रहा कि योग की यथार्थ विधि सीखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी आत्मचिंतन प्रथम दिन किया, दूसरे दिन अपने परमात्म चिंतन अवश्य किया। योग क्या है? योग के लिए अक्सर मनुष्य जब योग को समझता है तो फिजिकल आसन या प्राणायाम के साथ उसको जोड़ देता है और यही समझते कि योग माना योगा करना है। योग शब्द को योगा कर दिया। वास्तव में योगा नहीं है, ये योग है। योगा फिजिकल आसन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जब योग कहते हैं तो ये मन से कनेक्टेड हो जाता है। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, योग माना कनेक्शन। मनुष्य का कनेक्शन अनेकों के साथ अनेक स्तरों पर रहता है। जब हमारा कनेक्शन भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है तो लोग यही कहते हैं इसके जीवन में भौतिक योग बहुत है, भौतिकता से कनेक्टेड है। जब हमारा कनेक्शन व्यक्तियों से है और किसी व्यक्ति से समय पर हमें कोई मदद मिल जाती है तो यही कहते ये व्यक्ति का सहयोग था। हमारा संबंध समय के साथ होता है और जब कोई कार्य अचानक समय पर हो जाता है तो कहते हैं क्या संयोग था। योग निरंतर चलता है लाइफ में, सिर्फ में हमने उसको पहचाना नहीं। चाहे संयोग हो, सहयोग हो, भौतिक योग हो या दैवी योग हो, जब किसी इष्ट देवताओं से प्रार्थना करने पर कोई प्राप्ति हो जाती है तो यही कहते दैवी योग था जो ये प्राप्ति हो गई। लेकिन राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग है जो ऊंचे से ऊंची हस्ती परमात्मा के साथ कनेक्ट होने की बात है, जिसकी विधि सर्वश्रेष्ठ है और जिसकी प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ हस्ती, सर्वश्रेष्ठ विधि और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति इस योग के माध्यम से होती है, इसीलिए उसको राजयोग कहा गया। दुनिया में राजयोग का मतलब अलग ले लिया कि किसी के जीवन में अगर पॉलिटिक्स में जाना हो या कोई ऐसे स्थान पर विराजमान होने का अवसर मिलता हो तो कहते हैं इसके जीवन में एक राजयोग है, राज करने का योग। इसको राजयोग क्यों कहा गया? क्योंकि यह स्वयं पर राज करने का योग है, दूसरों पर राज करने का नहीं। अपनी इंद्रियों को डिसिप्लिन करने का योग है, इसीलिए दूसरे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये योग सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि योग का मतलब ही है स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। इट इज द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जहां हम स्वयं को सुसंस्कृत करते हैं यानी सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी कर्मेंद्रिय को स्वयं अनुशासन में ले आना, उसका ये विज्ञान है। यानी समझ से लॉजिकली इसको हम मास्टर करते हैं। कहीं कोई कर्मेंद्रिय का दमन नहीं करना है, इसलिए उसको राजयोग कहा। दूसरा, योग का मतलब है बैलेंस। जीवन के अंदर बैलेंस बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि स्पिरिचुअल होने के लिए हमें सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, नहीं, स्पिरिचुअल होने के लिए भी बैलेंस चाहिए। भौतिकता और आध्यात्मिकता का बैलेंस चाहिए जीवन में, कर्म और योग का बैलेंस चाहिए, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस चाहिए। उसी का नाम तो योग है। योग साधने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन अगर जीवन में बैलेंस नहीं है तो वहां पर लोगों के अंदर, देखने वालों में डर क्रिएट होने लगता है कि पता नहीं ये योग साधने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, वैरागी बनना पड़ेगा। नहीं, कर्म योगी बनने की जरूरत है। न कर्म को छोड़ना है, न व्यवहार को छोड़ना है, न गृहस्थ को छोड़ना है, न अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ना है, न अपने कर्तव्य को छोड़ना है, लेकिन इन सब का बैलेंस जीवन में कैसे रखना है ये राजयोग हमें सिखाता है। तो इस राजयोग को सरल शब्द में अगर कहा जाए तो ये एक यात्रा है। आप यहां बैठे हैं, बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन एक शब्द में अगर कहूं घर, क्या होता है? मन चला जाता है घर की ओर। पता नहीं बच्चे उठे होंगे टाइम पर, ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मन तुरंत भाग जाता है घर में। अगर मैं एक शब्द कहूं कार्यक्षेत्र, तो मन पहुंच जाता है अपने कार्यक्षेत्र पर। कितनी सेकंड्स लगती है पहुंचने में? फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है, फ्रैक्शन एकदम। एक शब्द सुनो और मन पहुंच जाता है वहां पर। तो ये जो मन गया, ये मन की यात्रा है। मन सारी दुनिया के अंदर घूमता है, कहां कहां चला जाता है। लंदन कहो, लंदन पहुंच जाएगा। अमेरिका कहो, अमेरिका पहुंच जाएगा। कोई खर्चा नहीं लगता है और मन उस यात्रा पर पहुंच जाता है। कोई घटना को याद करने के लिए कहा जाए कि बचपन में कोई ऐसी घटना हो जो बड़ी सुखद थी, उसको याद करने के लिए कहा जाए तो मन 25 साल पीछे भी चला जाएगा। भविष्य की अगर कोई प्लानिंग है कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, तो मन 10 साल आगे भी चला जाता है। मन के लिए कोई बंधन नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस कैन नॉट बाइंड द माइंड। कितने समय पीछे भी चला जाता है, आगे भी चला जाता है, यहां से लंदन जाता है, अमेरिका चला जाता है। तो डिस्टेंस और टाइम कैनॉट बिकम अ बॉन्डेज फॉर द माइंड। इसीलिए कहा मनुष्य का मन बहुत तीव्र गति से चलता है। अब मेडिटेशन में हम अपने मन को शून्य अवस्था में नहीं ले जाते। कई बार कई लोग मेडिटेशन की टेक्निक यही बताते, मन को थॉटलेस कर दो। थॉटलेस होता नहीं है, उसके लिए मन के विचारों का दमन करना पड़ता है, वो भी थोड़ी घड़ियों के लिए होता है। उसके बाद व्यक्ति अंदर से बेचैन हो जाता है और सोचता है कि क्या मैं मेडिटेशन को कभी साध ही नहीं सकता। जो मन की नेचुरल प्रक्रिया है उसको रोकने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो पानी का एक बहाव हो, नदी बह रही है, और एक व्यक्ति आकर के सोचे पानी की शक्ति वेस्ट जा रही है, क्यों न मैं एक दीवार खड़ी कर दूं, उस पानी को रोक लूं और उस पानी को कहीं सदुपयोग करूं। पानी रुक जाएगा, एक दीवार खड़ी कर दी, पानी रुक जाएगा। लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा जो पानी की शक्ति दीवार की शक्ति से बढ़ जा करके उस दीवार को तोड़ करके नुकसान कर देगा। लेकिन अगर एक इंजीनियर जाता है, वो सारे उस स्थान की व्यवस्था को देखते हुए सोचता है यहां एक डैम बनाया जाए, और वो डैम इस तरह से बनाया जाए जहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट हो, उसको कनाल दिया जाए ताकि वो पानी कनाल्स के माध्यम से लाखों एकड़ जमीन को पानी देना शुरू कर दे। तो उसने पानी की शक्ति को रोका खाली नहीं, उसको एक दिशा दे दिया। ठीक इसी तरह हमें भी अपने माइंड को थॉटलेस नहीं बनाना है, क्योंकि माइंड की एक नेचुरल प्रक्रिया है सोचना। लेकिन हम अपने विचारों को एक दिशा दे दे, क्या सोचना है, सकारात्मक दिशा जैसे ही मिल जाती है तो वो मन की ऊर्जा जो है, जो वेस्ट जा रही थी, उसका सदुपयोग करते हैं। उसी मन के विचारों की शक्ति से जीवन के अंदर असंभव को संभव करने की ताकत आ जाती है। तो योग में हम मन की गति को रोकते नहीं हैं, दिशा देते हैं। इसलिए कहा योग माना एक यात्रा है, मन की यात्रा है। कहां ले चलेंगे मन को? इस यात्रा के तीन पड़ाव है। पहला पड़ाव है इस यात्रा का, जिसको हम कहते हैं इट्स अ जर्नी विद इन, भीतर की यात्रा है। ये पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव इस यात्रा का है It's a जर्नी अपवर्ड्स। ईश्वर को जब याद करते हैं तो मन सहजता से ऊपर जाता है। और तीसरा पड़ाव इस यात्रा का है इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स। पहला प्रथम पड़ाव इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, इट्स अ जर्नी अपवर्ड्स एंड इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स। ये तीन पड़ाव है। पहला पड़ाव इस यात्रा का जो कहा इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, माना आत्मचिंतन से आरंभ करते हैं, जो प्रथम दिन आपने देखा। जब कहा इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, अर्थात सोल कॉन्शियसनेस, ये पहला पड़ाव है आत्मचिंतन। कहा जाता है आत्मचिंतन से होगा आत्म परिवर्तन। तो इसलिए जब हम मन को एक श्रेष्ठ चिंतन देना आरंभ करते हैं आत्मचिंतन, तो बाह्य दुनिया से अपने विचारों को भीतर मोड़ते हैं। जिस तरह एक प्लेन को उड़ना होता है तो एक रनवे चाहिए, एक ट्रेन को चलना है तो प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक इसी तरह मन की उड़ान भरनी है तो उसके लिए प्रथम पड़ाव बहुत आवश्यक है, जहां सोल कॉन्शियस नेचुरल हम बनते हैं, क्योंकि कर्म योगी बनना है हमें तो सोल कॉन्शियसनेस ये बहुत आवश्यक है। जब हम सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं तो उसका भाव क्या है? एक है बॉडी कॉन्शियसनेस, दूसरा है सोल कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस जब व्यक्ति उस स्टेज में है तो वो दैहिक बातों को ही चिंतन में लाता है, ये करना है, ऐसा करना है, आज मुझे पार्लर जाना है, आज मुझे ये बॉडी कॉन्शियस, बॉडी को ही संवारने में, बॉडी को ही आज हेल्थ चेकअप के लिए जाना है, बॉडी के लिए ही मुझे सब कुछ करना है, कि पार्लर जाना है या हॉस्पिटल जाना है, चेकअप कराना है, ये करना है, तो कंप्लीट बॉडी कॉन्शियसनेस। यह बॉडी से संबंधित जिन लोगों के साथ आपका कनेक्शन है उसी के प्रति ख्याल चलना, बच्चे क्या कर रहे हैं या परिवार के दूसरे सदस्य क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसी का ही चिंतन। जिस तरह एक व्यक्ति जब स्वयं को पिता समझता है तो कौन याद आता है? फादर के कॉन्शियसनेस में है या मदर के कॉन्शियसनेस में है तो कौन याद आएगा? बच्चे याद आएंगे। जब एक व्यक्ति पति की कॉन्शियसनेस में है या एक बहन पत्नी की कॉन्शियसनेस में है तो कौन याद आएगा? स्पाउस याद आएंगे। जिस वक्त आप स्वयं को बच्चे समझते हैं तो कौन याद आएगा? माता पिता याद आएंगे। जब आप स्वयं को भाई या बहन समझते हैं कौन याद आएंगे? अपने भाई बहन याद आएंगे। जब आप स्वयं को बॉस समझते हैं तो कौन याद आएगा? एम्प्लॉयज याद आएंगे। माना जिस कॉन्शियसनेस में अननोइंगली भी हम आ जाते हैं तो उसी से कनेक्टेड लोगों की याद स्वाभाविक आएंगी। तो जब आप स्वयं को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा की याद। अब तक मुश्किल लगता था भगवान को याद करने बैठो, हाथ में माला होगी, जप रहे होंगे ईश्वर का नाम, तो भी मन कहां कहां चला जाता है। कभी कोई कारोबार में चला गया, कभी कोई घटना में चला गया, कोई न्यूज सुनी उसमें चला गया, कभी परिवार के सदस्य में चला गया, फिर क्या कहते हैं, अरे भगवान के सामने बैठे लेकिन मन बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, दिखता ही नहीं, हाथ में माला थी, नाम भी जप रहे थे तो भी मन दुनिया के अंदर घूम रहा था। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं को आत्म के स्वमान में, सोल कॉन्शियस में स्टेबलाइज ही नहीं किया। तो परमात्मा की याद कैसे आएंगी? हमारा मन फिर भी इसी दुनिया में स्टेबलाइज्ड है, मैं पति हूं या पत्नी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो उसी से कनेक्टेड बातें याद आएगी, स्वाभाविक है। इसलिए पहला पड़ाव है कि ईश्वर की याद सहज हो, उसके लिए स्वयं को आत्मनिष्ठ। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन को यही कहा, हे अर्जुन आत्मभावस्थ, आत्मभाव में स्थित हो जा। जब आत्मभाव में स्थित होते हैं कि मैं इस देह में चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, आत्मा के गुणों को आप स्मृति में ले आओ कि आत्मा की वास्तविकता है कि मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में एकदम शुद्ध पवित्र हूं, मेरा स्वभाव शांति है, आनंद है, प्रेम है, तो जैसे इस कॉन्शियसनेस में आप आने लगेंगे कि वैसे वाइब्रेशन आपके जनरेट होंगे, वैसे प्रकंपन शुरू हो जाते हैं। मैं प्रेम स्वरूप हूं या मैं शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा स्वगुण है, तो शांति के प्रकंपन मेरे चारों ओर विकसित होने लगते हैं, जिसको कहा जाता है कि ऑरा क्रिएट होता है। हर इंसान के चारों ओर एक ऑरा है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। जब व्यक्ति गुस्से में है, गुस्सा कर रहा है, तो एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो प्रकंपित होता है गुस्सा, तो नेचुरल है कि उसका ऑरा जो है नेगेटिव होने लगता है, या जिसको कहा जाए कि पॉजिटिव ऑरा डैमेज होने लगता है। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, बड़े शुद्ध पवित्र खुश, एक हंसते हुए बच्चे को, मुस्कुराते हुए बच्चे को आप उठा लो, उस वक्त आप अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं। इतना वो ऑरा पावरफुल होता है कि उस ऑरा के साथ कनेक्ट होने से भी आप अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं। इसीलिए तो बच्चे के साथ जब खेलता है इंसान, तो उस वक्त वो लाइट हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है। कितना भी स्ट्रेसफुल हेक्टिक डे हो उसका, लेकिन घर आते एक मुस्कुराते हुए बच्चे को जब देखता है, उसको उठा लेता है, गले लगा लेता है, उस वक्त उसको कोई स्ट्रेस, कोई थकावट महसूस नहीं, उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है, क्योंकि एक बहुत पावरफुल ऑरा के कांटेक्ट में आप आए। इसलिए ठीक इसी तरह जब हम मेडिटेशन करते हैं और प्रथम अवस्था में जब आत्मभाव की स्थिति में बैठते हैं, तो हमारा ऑरा भी धीरे धीरे क्लीन होने लगता है, जिसको कहा जाता ऑरा क्लेंजिंग। तो आत्मचिंतन से हमारा ऑरा क्लींसिंग होने लगता है। जब आप ये स्मृति में आते हो कि मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में एकदम प्योर हूं, जब ईश्वर के धाम से इस संसार में आई थी तो एकदम प्योर स्वरूप था मेरा, तो वो ऑरा में वाइब्रेशंस जनरेट होने लगते हैं और वो ऑरा आपका क्लीन होने लगता है जो इम्प्यूरिटीज का है। शांत स्वरूप है तो गुस्से की जो डैमेज हुई है वो क्लीन होने लगता है। मैं प्रेम स्वरूप हूं तो जो नफरत की वाइब्रेशंस है वो क्लीन होने लगती है। इसलिए आत्मभाव में स्थित होना, यानी आत्मा के जो सात गुण है, उन सातों गुणों से अपने ऑरा को विकसित करना, जो डैमेज हुआ है उसको क्लीन करते जाना। क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति का जैसा ऑरा होता है वैसी घटना को वो आकर्षित करता है लाइफ में। मिसाल के रूप में आपने कई बार अनुभव किया होगा जीवन में कि एक के बाद एक बुरी खबर ही मिलती रहती है। चलते चलते पैर सीढ़ी उतर रहे थे, मुड़ गया, हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया। दो दिन बीता नहीं कि बच्चे का रिजल्ट आया, एग्जाम में फेल हो गया। दो दिन बीता नहीं कि बिजनेस में किसी के साथ, कोई क्लाइंट के साथ, कोई एम्प्लॉय के साथ झगड़ा हो गया, नुकसान हो गया। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पता नहीं कौन सा समय चल रहा है, एक के बाद एक बुरी खबर ही मिल रही है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा हमारी लाइफ में। जितना व्यक्ति नेगेटिव सोचता है और नेगेटिव वाइब्रेशन को प्रकंपित करता है, नेगेटिव ऑरा उसका बनता है, उतना ही वो नेगेटिव घटनाओं को आकर्षित करता है अपनी ओर। और जब मेडिटेशन करना आरंभ करते हैं, अपना ऑरा को क्लीन करना शुरू करते हैं, जैसे ही आत्म के चिंतन से आत्म का वो वाइब्रेशन प्रकंपित करके आप उस ऑरा में आने लगते हो कि आप जीवन में ये भी महसूस करते, एक के बाद एक अच्छी खबरें आने लगती है। अरे चलते चलते बहुत सुंदर बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, जितनी मेहनत नहीं किया था उससे भी अधिक आ गया। आप कहेंगे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। उसके बाद आपको कोई और अच्छी खबर मिलती है, एक के बाद एक, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लगता है भगवान का विशेष आशीर्वाद हो रहा है। भगवान के आशीर्वाद भी उनके ऊपर ही होता है जिनका ऑरा प्योर है। तो प्योर जितना ऑरा होता है, अच्छी घटनाओं को आकर्षित करना शुरू करते हैं। और जब अच्छी घटनाएं होने लगती है तो खुशी होती है, आनंद होता है, तो और अपना ऑरा जो है आनंद के वाइब्रेशन से, खुशी के वाइब्रेशन से चार्ज होने लगता है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव सोच आपकी चलती है और वो ऑरा फिर से डैमेज होने लगता है, फिर से नेगेटिव घटनाओं को आप आकर्षित करते हैं, और वो नेगेटिव घटनाएं जैसे होने लगती है, कई लोग सोचते पता नहीं मेरे जीवन में क्या बात है, क्यों ये नेगेटिव मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर क्या करता है मनुष्य, जब एक के बाद एक नेगेटिव खबरें आती है तो क्या करता है, और ऐसे समय पर कोई व्यक्ति से जब बात करते हैं ना, तो लोग भी हमें सजेस्ट क्या करते, फलाना एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, कुछ बताएगा आपका समय कौन सा चल रहा है। और एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे अभी तो आपके ऊपर ढैया चल रही है, साढ़े साथी आ गई है, ये हो गया है, और डरा देते हैं इंसान को। और जब और डरा देते हैं तो फिर मनुष्य घबराहट में पूछते हैं इसका कोई उपाय है, कहते क्यों नहीं है, है ना, अच्छा क्या उपाय है, तो कहते हैं या तो आपको 1,00,000 नाम लिखने पड़ेंगे, भगवान के नाम लिखो, फिर हम यज्ञ करेंगे, उसमें वो नाम को स्वाहा करेंगे। कहते मेरे पास तो टाइम नहीं है, नहीं तो लिखवा सकते हैं ना किसी से, किसी और से लिखवा सकते हैं, वो भी हम यज्ञ में स्वाहा कर सकते हैं, जो आपको ही उसका पुण्य प्राप्त होगा, उसके लिए इतना खर्चा होगा, दूसरे को देना पड़ेगा। फिर क्या कहेंगे, गायों को खिलाओ, गायों को 1 हफ्ते तक घास खिलाओ। फिर क्या कहते हैं, गरीबों को दान करो। भावार्थ ये है कि आपका जो ऑरा है, जो पुण्य का ऑरा है, वो क्षीण हो गया है। तो जब ये व्यक्ति कार्य करता है, जैसे 1,00,000 नाम लिखने के लिए कहा, तो जब व्यक्ति भगवान का नाम लिखता है, उस समय बुरे विचार तो नहीं आते हैं, जब व्यक्ति गायों को जाकर घास खिलाता है तो बुरे विचार तो नहीं आता है। जब कोई गरीबों को दान करता है तो उसको जो दुआएं मिलती है तो दुआएं उसके खाते में जमा होती है, यानी उसका पुण्य जैसे राइज होता है, अच्छे विचार से उसका ऑरा जैसे थोड़ा विकसित हुआ तो वो बुरी घटनाओं का जो प्रभाव है क्षीण होने लगता है। ये साइंस है और कुछ नहीं है, ये साइंस है। तो इसीलिए क्यों ना हम आत्मचिंतन करते हुए अपने ऑरा को क्लीन करें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को जनरेट करें, आत्मचिंतन करते हुए आत्मा के सात गुणों को विकसित करते हुए हम जितना अपने ऑरा को पॉजिटिव करते जाएंगे समय बदल जाता है, अपने आप अच्छी घटनाओं को पुनः आकर्षित करने लगते हैं। यह है पहला पड़ाव इस यात्रा का, जहां हम आत्मचिंतन या आत्मभाव में मन को स्थित करते हैं और अपने मन को एक तैयार करते हैं ईश्वर से मिलन मनाने के लिए। जैसे किसी बड़े हस्ती के साथ आपका अगर अपॉइंटमेंट हो, आप ऐसे वैसे नहीं चले जाएंगे, स्नान करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी तरह से तैयार हो फिर जाएंगे। किसके साथ मुलाकात है आपकी? सारा दिन का गंदा कपड़ा या पसीने में से आए हुए ऐसे नहीं चले जाते हैं, क्योंकि आपको वैल्यू है किस हस्ती से आप मिलने जा रहे हैं। ठीक इसी तरह ईश्वर से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? वैसी तैयारी तो होगी कि नहीं होगी? ऊंचे से ऊंची हस्ती से हम मिलने जा रहे हैं, नेगेटिव विचारों के साथ थोड़ी जाएंगे। इसलिए आत्मभाव में जब अपने मन को स्थित करते हैं, ये रनवे हो जाता है जहां से हम अपने मन की उड़ान को सहज बढ़ा सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये प्रथम कदम है इस यात्रा का। दूसरा पड़ाव जिसको कहा परमात्म चिंतन, जिससे मिलना है वो कैसा है, मैं कौन हूं, कैसा हूं, उसका चिंतन ये बेस बन गया। फिर किससे मिलना है उसका भी चिंतन करो, वो ऊंचे से ऊंची हस्ती है। और जब उसके विषय में चिंतन करते वो सर्वशक्तिमान है, वो फुल ब्राइट ऑरा के साथ है, उसके जब संपर्क में जाते हैं, जैसे कहे एक हंसते हुए बच्चे, एक प्योर बच्चे के संपर्क में भी आप आते हो, अपना स्ट्रेस भूल जाते हो, ये इमीडिएट इफेक्ट आप देखते हो, तो आप सोचो कि जब आप सुप्रीम अथॉरिटी से कनेक्ट होते हो, मन को कनेक्ट करते हो, तो क्या होगा? आपके कई जो नेगेटिविटीज है वो उस ऑरा में समाप्त हो जाती है। जैसे मान लो कि सूर्य है, तपत वाला सूर्य, आप थोड़ी देर भी वहां खड़े हो जाते हैं, सन बाथ लेते हैं, तो क्या होता है? आपके जो जर्म्स है, वो कीटाणु जो है वो खत्म हो जाते, भस्म हो जाते हैं। ठीक इसी तरह कई जन्मों के नेगेटिविटी के कीटाणु जो है, जब उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस परमात्मा के कनेक्शन में आते हैं कि हमारे अंदर की वो नेगेटिविटी भी समाप्त होने लगती है। इसलिए तो उसको दिव्य तेजोमय कहा, जो तेजोमय है, प्रकाशमान है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन वर्णन करता है, हजारों सूर्य एक साथ आकाश मंडल में उदय हो गए हो, इतना तेज है जिसका। जो अर्जुन कहता है भगवान को, बस करो प्रभु, ये तेज बहुत है, मैं उसको सह नहीं पा रहा हूं। भगवान भी अपने व्यक्तित्व का वर्णन जब करता है तो कहा, मैं सूर्य के समान तेजोमय हूं, लेकिन मैं धधकता हुआ नहीं हूं। दूसरी लाइन में ही कहता है, नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह शीतल हूं। शीतल है, प्रकाशमान है, लेकिन शीतल है। सागर की तरह अनंत हूं, अनंत भी है। एक एक बात, 81 श्रेणी में जो सर्वोच्च चीजें हैं उसका वर्णन गीता में भगवान ने किया 10वें अध्याय में, कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। वो व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए परमात्मा के जो ग्रेस है, जो उसकी आसामी जिसको कहा जाए, वो आसामी महसूस होती है। तो जब उसका चिंतन करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी के कीटाणु है, जो हमारे अंदर अशुद्धि है, वो भी जलना आरंभ होती है। इसलिए परमात्मा स्मृति के बाद जैसे अंदर में हल्कापन आने लगता है, लाइटनेस फील करते हैं। ये मेडिटेशन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो सोल कॉन्शियसनेस ये बेस है, और उसी से फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस परमात्मा स्मृति में जब हम अपने मन को ले चलते हैं तो उसकी जो रेज है, उसकी जो किरणें हैं, उस किरणों में हम अनंत महसूस करते हैं। और इसलिए जो गुण है परमात्मा के, जब उसका चिंतन करते हैं तो वो गुणों के जैसे वाइब्रेशन हम अपने अंदर समाने लगते हैं। जिस तरह किसी व्यक्ति को देखते ही इंसान भयभीत हो जाता है और उसके अंदर भय क्रिएट होता है, तो भय से क्या होता है, कहा जाता कि आपका मस्तिष्क ऐसा केमिकल्स रिलीज करना शुरू करता है जो व्यक्ति के अंदर वो भय उसको कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देना शुरू करता है, कई ऑर्गन्स को डैमेज करता है। बार बार अगर भयभीत होता है तो बीमार होने लगता है। ये भी एक साइंस है। ठीक इसी तरह जब हम परमात्मा गुणों का चिंतन करना आरंभ करते हैं, परमात्मा की शक्ति का आह्वान करते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर आनंद का अनुभव, खुशी का अनुभव होने लगता है। तो वो खुशी, आनंद, वो लाइटनेस को क्रिएट करते हल्का बनाने लगता है। ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको हेल्दी केमिकल्स कहते हैं, जो हमारे हेल्थ को भी अच्छा करने लगते हैं। समझो आप परमात्मा प्रेम को इमर्ज करो, जैसे मीराबाई का वर्णन है कि जो परमात्मा प्रेम के अनुभव में थी तो जहर का कटोरा भी अमृत बन जाता है। ये वाइब्रेशन है, ह्यूमन वाइब्रेशन इतने पावरफुल है कि आप अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ अगर पानी को भी देखो तो क्या होता है, पानी चार्ज होता है, और नेगेटिव वाइब्रेशन से पानी को देखो तो पानी के अंदर कीटाणु क्रिएट हो जाते हैं। ये वाइब्रेशन है। सोच का ही तो प्रभाव है। तो मेडिटेशन, ये शब्द लैटिन शब्द से निकला है, मेडेरी, and mediri means to heal thyself from within, भीतर से अपने आप को हील करते हैं। तो जितना आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस को एक्सपीरियंस करो, परमात्मा में अपने मन को स्थित किया, सुप्रीम लाइट है, उसकी किरणों को खाली आप अपने अंदर वेलकम करो, आने दो, आप देखेंगे आपका भय, आपके अंदर जो नेगेटिविटीज है, धीरे धीरे वो समाप्त होने लगेगी और उस परमात्मा शक्ति से आप स्वयं को एम्पावर करना शुरू करते हो। और जैसे ही एम्पावर करते हैं, वो खुशी का अनुभव होता है, वो आनंद का अनुभव होता है, तो वो आनंद से क्या होता है, आप अपने आप को हील करना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं राजयोग मेडिटेशन से कि कैंसर जैसे सेल्स भी समाप्त हो गए हैं। भयंकर से भयंकर बीमारी को जब वो वाइब्रेशन कंटिन्यूअस प्राप्त होने लगे, वो सेल्स उसके समाप्त हो गए। कुछ समय पहले एक भाई को ब्रेन में 32 ट्यूमर्स थी, 32 ट्यूमर्स। जब डॉक्टर्स ने जवाब दे, और सारी कैंसरस, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे पास एक हफ्ता है बस, जो करना हो अभी यहां हॉस्पिटल में समय अपना बर्बाद नहीं करो, अपने फैमिली के साथ सिर्फ समय बिताओ, क्योंकि हफ्ते का ही तो मेहमान है। हमसे जो होता था वो हमने किया, लेकिन नथिंग इज हैपनिंग। उस भाई ने सोचा है मेडिटेशन शुरू करूं मैं, और उसने यही परमात्म स्मृति के पावरफुल लाइट, जो सर्वशक्तिमान है, जो दिव्य तेजोमय है, उसकी लाइट का मैं आवाहन करता हूं मेरे ब्रेन के ऊपर, वो काम कर रही है, वो सारे कीटाणुओं को जला रही है, समाप्त कर रही है। हफ्ता बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 10 दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 15 दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। माना जो मृत्यु थी वो मृत्यु आई नहीं उसको। 15 दिन के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने कहा तुम जिंदा है, 15 दिन हो गए तेरे को तो, कहा क्या कर रहा है, कैसे तुम जीवित हो। उसने कहा बस मैं कुछ नहीं, मेडिटेशन का करते रहो। करना शुरू किया उसने कि नहीं रिजल्ट मिल रहा है। 3 महीने के बाद फिर डॉक्टर के पास गया, जब उसका MRI निकाला तो धीरे धीरे वो सेल जो ट्यूमर्स थी वो सब क्षीण होने लगी। कहा तुम जो कर रहा है करते रहो। 6 महीना बीत गया, साल बीत गया, सारी ट्यूमर्स पिघल गई थी, समाप्त हो गई थी साल के बाद। और आज भी 15 साल उस बात को हो गया, आज भी वो जिंदा है। ये है कमाल कि जब आप उस परमात्म शक्ति, ऐसे कई अनुभव है कि जो डॉक्टर्स या साइंस नहीं समझ पाए, इसलिए कहा जाता वेयर साइंस एंड्स फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल साइंस बिगिंस। आध्यात्मिकता एक विज्ञान है, ये अंधश्रद्धा नहीं है, एक विज्ञान है कि जब हम अपने आप को उस सुप्रीम के कांटेक्ट में ले आते हैं तो असंभव संभव होने लगता है, और उस परमात्म शक्ति से हम अपना कंप्लीट ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, नेगेटिविटीज समाप्त कर सकते हैं, हेल्दी जो केमिकल्स है उसको रिलीज करने लगते हैं, और हेल्थ हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। यह दूसरा पड़ाव है। उसके बाद तीसरा पड़ाव है इस यात्रा का, इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स, यानी उस वाइब्रेशंस को आप फिर रिलीज करो दूर दूर तक। जो कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना भी मिलो दूर बैठा हो, उसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने प्योर वाइब्रेशन से। आप उसको याद करेंगे, 10 मिनट के अंदर उसका फोन आ जाएगा और आप कहेंगे अभी आपको ही याद कर रहे थे। अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए भाई आपने कैसे हमको फोन कर दिया तो क्या कहेंगे? बस ऐसे ही मन हुआ, आपको याद कर लिया। वास्तव में जो हम याद कर रहे थे वो वाइब्रेशंस पहुंचा रहे थे, वो व्यक्ति को महसूस हुआ और उसने रिस्पॉन्ड किया। जैसे टेलीफोन से हम किसी को रिंग देते हैं और रिस्पॉन्ड करता है, ठीक इसी तरह ये टेलीपैथिक कनेक्शन है। और ये टेलीपैथिक कनेक्शन से हम डिस्टेंट हीलिंग भी कर सकते हैं, डिस्टेंट मैसेजेस भी दे सकते हैं, और उसको एक्यूरेट फील होता है, कैच करता है कि नहीं, जैसे आप मुझे ये बात कह रहे हो, ये मैंने महसूस किया, और आपको लगता है वाह मेरे मन की बात उस तक पहुंच गई। आप प्रैक्टिकली ये जीवन में मैंने महसूस किया है, प्रयोग किया है। आपके साथ किसी की मानो बातचीत करते करते कुछ मतभेद हो गया, वो व्यक्ति आपसे नाराज हो गया, आप मेडिटेशन से आप उसको क्षमा करो, क्षमादान दो। जो जैन धर्म में बहुत सुंदर क्षमापना की बात करते हैं कि आप वो वाइब्रेशंस रिलीज करो उस आत्मा को, वो व्यक्ति खुद रियलाइज करेगा कि जैसे मुझे किसी ने क्षमा कर, वो इतना अंदर से हल्का हो जाए, थोड़ी देर के बाद आ जाएगा आपके पास में, जैसे उसको कोई फीलिंग थी ही नहीं आपके बारे में, कोई नेगेटिविटी थी ही नहीं, और वो खुद आकर के कहेंगे माफ कर देना, सॉरी मैंने आपसे ऐसा बिहेवियर किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, या जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इस तरह से वापस व्यवहार करने लगेगा। भावार्थ ये कि दूर तक भी आप ये वाइब्रेशंस को फैला सकते हो, महसूस करा सकते हो, और किसी को आप क्षमा कर दो तो आपके साथ के जितने भी उसका जो अकाउंट क्रिएट हुआ है वो अकाउंट क्लियर हो जाएगा। एक क्षमा करने से, किसी ने कैसा भी व्यवहार किया या आपने कैसा भी व्यवहार, आप उनसे क्षमा मांग लो और देखो आपका जो अकाउंट क्रिएट हुआ है वो अकाउंट क्लियर हो जाएगा, और आप जैसे उससे फ्री हो गए, मुक्त हो गए, ये महसूस करने लगेंगे। तो ये तीन पड़ाव है इस मेडिटेशन के। लेकिन जो कहा ईश्वर के साथ का जो कनेक्शन है, मन तभी लगता है या मन वहां जाता है, उसके भी कुछ आधार है। जैसे किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो यादें भी अनेक प्रकार की होती, एक जैसी यादें नहीं होती है। जहां सिर्फ परिचय होगा, ज्यादा संबंध नहीं है, खाली परिचय है, वहां याद कैसी होती है? वहां याद करना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन जहां संबंध है वहां याद कैसी होती है? अपने आप आ जाती है, समय अनुसार अपने आप याद आ जाती है। लेकिन जहां स्नेह है, प्यार है, वहां याद कैसी होती है? वहां याद कैसी होती है? सताने वाली, सताने वाली, अंदर सताती है। जैसे एक मां का बच्चे में स्नेह है, प्यार है, बहुत गहरा, वो बच्चा अगर विदेश भी चला गया तो मां को क्या होगा? उसकी याद सताती है। और जहां कुछ प्राप्ति होने वाली है वहां याद कैसी होती है? स्वार्थ भरी याद, मतलब भरी याद। तो ये चार आधार पर चार प्रकार की यादें हैं। जहां सिर्फ संबंध है करना पड़ता है, जहां संबंध है वहां आ जाती है। जहां स्नेह है वहां सताती है, और जहां प्राप्ति है वहां स्वार्थ भरी है। अब देखें ईश्वर के साथ हमारी याद कौन से प्रकार की है, करना पड़ता है, आ जाती है, सताती है, या मतलब भरी है। कौन सी है? आ जाती है, मोस्टली मतलब भरी है। होनी कौन सी चाहिए? सताने वाली होनी चाहिए, या सहज आ जाए ऐसी होनी चाहिए। लेकिन है कौन सी? या तो करना पड़ता है या मतलब भरी है। करना पड़ता है माना अभी तक परिचय भी क्लियर नहीं है, पता है भगवान है लेकिन मेरा कोई संबंध है उसके साथ? खाली गायन कर लिया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, गा लिया। लेकिन क्या मैंने कभी ये एक्सपीरियंस किया या ये संबंध जोड़ा कि वो माता कैसे है, पिता कैसे, बंधु कैसे है, सखा कैसे, विद्या कैसे है, या सर्व संबंध मेरे कैसे हैं उसके साथ? ये कभी मैंने फील किया, जोड़ा ये संबंध? जब संबंध ही नहीं जोड़ा तो आएगी कैसे उसकी याद, या सताएगी कैसे उसकी याद? सहज आ जाए उसके लिए तो संबंध जोड़ना पड़ता है। खाली गाने से काम नहीं चलेगा, तुम मात पिता हम बालक तेरे, गाने से काम नहीं चलता है, फील करो। आज एक बच्चा जब अपनी माँ को याद करता है कैसे करता है? आज आपको मैं कहूं आप अपने माता पिता को याद करो, सहज है या मुश्किल है? बहुत सहज। कैसे याद करते? क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं माता पिता को याद करने में? क्या सोचते हैं? माता पिता को याद करने में उसके गुणों को सोचते हैं। एक बच्चा, छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है ना, वहां उसके दोस्तों के साथ उसकी जब बात होती है, माता पिता का जब सब्जेक्ट निकलता है तो क्या कहता है? अरे मेरी माँ इतनी अच्छी है ना, इतनी भोली है, वो मेरी हर बात मान लेती है ना, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ ने मेरे लिए ये किया। मैं गुणों को ही स्मृति में लाता है। तो माता पिता की जहां याद है वहां उनके गुणों को, कि भाई मेरे पिता ने सचमुच मेरे लिए कितना सहन किया है, याद आता है ना। उन बातों को लेकर के आप याद करते हो, उसके गुणों को लेकर के। तो परमात्मा तो गुणों में अनंत है ना, उसके गुणों को याद करना मुश्किल है क्या? आ जाएगी। वही हमारा परम शिक्षक भी है। अच्छा, शिक्षक को याद करते तो कैसे याद करते हैं? पढ़ाई के आधार पर। मेरे टीचर ने मुझे यह सिखा, एक बच्चा स्कूल से जब घर आता है तो माँ को क्या कहते, आज मेरे टीचर ने ऐसे किया, आज मेरे टीचर ने ये पढ़ाया, आज मेरे टीचर, मैं मेरे टीचर का फेवरेट हूं, पता है आपको? माँ को उसके टीचर में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो क्या कहेगी? बंद करती है स्कूल की बात, टीचर की बात, है ना? नहीं, उसकी बातें सुनो, क्योंकि जितना उसका टीचर से प्यार होगा उसका उसके पढ़ाई से भी प्यार होगा, और वो पढ़ाई उसको याद रहेगी। जब आप कह देते हो छोड़ो अपने टीचर की बातें, जब आओ जब देखो टीचर की बात, जब देखो, फिर जितना उसको टीचर से डिस्कनेक्ट है उसकी पढ़ाई से भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए पहले बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता, बाद में वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, क्योंकि माँ बाप ने उसके टीचर को सपोर्ट ही नहीं किया। ये इतना सूक्ष्म है, हम समझ नहीं पाते, ये वाइब्रेशंस है। फिर गुरु की याद, जैसे व्यक्ति बड़ा होता है गुरु करता है, गुरु को कैसे याद करता है? गुरु के आदर्शों को लेकर के याद करते हैं, गुरु की शिक्षाओं को लेकर के याद पढ़ा। टीचर और गुरु में बहुत अंतर है। टीचर हमें बाह्य जगत का ज्ञान देगा, गुरु हमें अंतर जगत का ज्ञान देगा। टीचर हमें शारीरिक कमाई का रास्ता बताएगा, गुरु हमें आत्म की उन्नति का रास्ता बताता है। बहुत अंतर है। जब गुरु को स्मृति में लाते हो, परमात्मा सतगुरु है, उस सतगुरु की श्रीमत श्रेष्ठ मत हमारे लिए क्या है उसको याद करो। स्वाभाविक आपका प्यार उससे जुड़ने लगेगा। जितना आपका प्यार बढ़ेगा उतना ही आपकी स्मृति, जहां इंसान का प्यार होता है उसी को तो याद करता है वो। उसको बंधु बनाओ, सखा बनाओ, दोस्त बनाओ। कहा जाता है खुदा दोस्त। खुदा को दोस्त बना करके तो देखो, वो दोस्ती बहुत अच्छे से निभाता है। हम चूक कर सकते हैं, वो चूक नहीं करेगा। इतना अच्छा खुदा दोस्त है। उसी को प्रियतम बनाओ मीराबाई की तरह, है ना। प्रियतम बनाकर उसको प्रियतम की रीति से याद करो। जैसे दुनिया में किसी व्यक्ति का व्यक्ति से बहुत प्यार हो, उसकी शादी होने वाली है, हुई नहीं है, लेकिन एकांत के पलों में बैठेंगे, चले जाएंगे। कहां गया? प्रियतम की याद में खो गया, खो गया। पास में से कोई गुजर गया, उसको पूछा जाए सुनाई नहीं देता है। ऐसे ऐसे करो तब उसका ध्यान टूटता है। उसको पूछे यहां से कोई गया तो क्या कहता है? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। अरे आंखें खुली है, यहां बैठा है, इतना बड़ा व्यक्ति चला गया, दिखाई नहीं दिया, तो क्या कहते हैं? भाई मेरा ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहां था? ध्यान करने के लिए आंखें खुली चाहिए, बंद चाहिए? ध्यान किसको कहा जाता है? ध्यान करने के लिए आंखें बंद नहीं चाहिए, खुली आंखें हैं, बैठे हैं, खो गए। इतना बड़ा व्यक्ति चला गया, इतना आवाज करते हुए गया तो भी पता नहीं चला। कोई आज आकर के पूछ रहा है, सुनाई नहीं देता है। इसको कहते हैं ध्यान। ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए मुश्किल क्यों लगता है? ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि शायद ईश्वर से हमें इतना प्यार ही नहीं है। और कहीं कहते हैं फिर ईश्वर से प्यार कैसे करें? प्यार सिखाया थोड़ी जाता है, प्यार हो जाता है। ईश्वर से भी जब प्यार हो जाए ना तो ध्यान लग जाएगा, लगाना नहीं पड़ेगा, उसकी याद सताने लगेगी। बहुत सुंदर अनुभव होगा। कभी आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, हर समय जैसे उसके साथ है ये फील करेंगे। ये है प्रियतम। इसीलिए कहा मीरा को जहर का कटोरा भी अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि उसका उस प्रियतम से इतना प्यार था, वो वाइब्रेशन ने उस जहर को भी क्या कर दिया? खत्म कर दिया, अमृत बना दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। ये है ध्यान की ताकत। ट्यूमर्स को पिघलाना कोई बड़ी बात नहीं है, हेल्थ को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना अगर ईश्वर का प्यार आप महसूस करना शुरू करो, उस प्यार में जब अपने आप को खो दो, संभालो, हर कर्म करते हुए जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम को याद करती है, कर्म कर रही, रोटी बन, मन में कौन है? इसी तरह कर्म करो, स्मृति में कौन रहे? यह है मेडिटेशन, यही ध्यान है। ध्यान के लिए कर्म को छोड़ना नहीं पड़ता है, ध्यान के लिए जिम्मेवारी को छोड़ना नहीं पड़ता है, ध्यान के लिए अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने गृहस्थों को छोड़ना नहीं पड़ता है। सब कुछ करते भी उसके ध्यान में आप रह सकते हो। इतना सहज है, सरल है। रिश्ता जोड़ के तो देखो, प्यार करके तो देखो उसके साथ। मेडिटेशन आपको इतना आसान लगेगा, है ना? और जहां इतना प्यार से आप याद करेंगे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्राप्ति के लिए, अपने आप। कहा जाता है ना, वो देना शुरू करता है तो छप्पड़ फाड़ के देना चालू करता है। देखो तो सही, करके देखो तो सही, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बाहर सूरज के सामने खड़े होकर सूर्य से मांगते नहीं हो कि सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे। खड़े रहो, उसके कांटेक्ट में आए, अपने आप इतनी गर्माइश भर जाएंगी, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं? समुद्र के पास खड़े रहकर समुद्र से मांगते नहीं है तेरी शीतल हवा मुझे दे, अपने आप मिलने लगेगी। रोम रोम शीतलता से भर जाएगा, ठंड लगने लगेगी, इतनी शीतलता आ जाएगी। इसी तरह परमात्मा में ध्यान लगाने से उसे मांगने की जरूरत नहीं है। जो आपको चाहिए, जैसी आपकी पात्रता होगी, वैसे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ज्यादा चाहिए तो पात्रता बढ़ाते जाओ। जितनी आपकी पात्रता बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा छप्पड़ फाड़ के मिलना चालू होगा। पात्रता बढ़ाओ, है ना? पात्रता बढ़ाओ, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। अभी तो कोई कंप्लेन नहीं होंगी, कोई कंप्लेन होगी? मन नहीं लगता है ईश्वर में, ध्यान नहीं लगता है, कोई कंप्लेन आएगी? नहीं, इजी है ना, यही मेडिटेशन है। अच्छा, ओम शांति।